13वां चैप्टर इतिहास प्रक्रिया और अधिष्ठान। विश्व में विभिन्न देशों के प्रारंभिक इतिहास लेखन में मूलतः विशिष्ट व्यक्तियों, सम्राटों, शासकों या धर्माचार्यों को विशिष्ट महत्व दिया गया था। इसके वैशिष्ट को केंद्र में रखकर इतिहास की रचना की जाती थी, परंतु विभिन्न देशों में जनतांत्रिक व्यवस्था के उदय और विकास से इतिहास में व्यक्तियों की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व दिया जाने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति और समाज की प्रतिद्वंद्विता का एक भ्रामक भाव उत्पन्न हुआ, जिसके अंतर्गत यह स्वीकार करने का आग्रह किया गया कि समाज और व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार की सत्ताएँ हैं। यदि ऐसा है तो यह प्रश्न उठाया गया कि इतिहास किसका होता है। प्रस्तुत लेख में इस प्रश्न का विस्तार से विचार करके निष्कर्ष निकाला गया है। इतिहास सांस्कृतिक चेतना के आत्मविकास का होता है। सांस्कृतिक दृष्टि से यह आत्माभिव्यक्ति मानसिक स्तर पर मूल्य बोध के रूप में होती है और व्यवहार के स्तर पर आदर्शों के चरितार्थ करने के प्रयत्न में। समाज के प्रवाहात्मक स्तर के ऊपर संस्कृति का सृजनात्मक स्तर आरोपित रहता है। इन दोनों के संश्लेषण से ऐतिहासिक प्रक्रिया निष्पन्न होती है। इतिहास किसका होता है? व्यक्तियों के कार्यों का, राज्यों का, सामाजिक परिवर्तनों का, सांस्कृतिक परंपराओं का अथवा सभ्यताओं का। जहां पूर्व युगों में व्यक्ति को ही इतिहास में केंद्रीय स्थान प्राप्त होता था, अब इतिहासकार प्रायः इस बात पर एक मत है कि इतिहास मुख्यतः समाज आश्रित होता है, न कि व्यक्ति आश्रित। इस दृष्टि के विजय होने में एक ऐतिहासिक कारण यह भी रहा है कि आधुनिक युग में जनतंत्र की विजय यदि व्यवहार में नहीं तो कम से कम घोषणा में सर्वत्र स्वीकृत हुई है। वर्तमान युग सामान्य जनता का युग कहा जाता है। उसमें विशिष्ट व्यक्तियों का महत्व कम दिखे तो इसमें विस्मय नहीं होना चाहिए। यह बात भी सच है कि पूर्व युगों में राजतंत्र अथवा कुलीन तंत्र के कारण कुछ व्यक्तियों को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जाता था। वस्तुतः व्यक्ति और समाज की प्रतिद्वंद्विता का भाव एक मिथ्या धारणा पर आधारित है। व्यक्ति अन्य प्रकार की सत्ता है, समाज अन्य प्रकार की। समाज का अस्तित्व व्यक्तियों के संबंधों से उत्पन्न संस्कारों में है, जो कि व्यक्ति मानस पर रहते हैं। समाज स्वयं एक विलक्षण व्यक्तित्व, एक विराट पुरुष नहीं है। दूसरी ओर व्यक्ति स्वयं परमाणुवत पृथक और निरपेक्ष सत्ता नहीं है। व्यक्तियों के शरीर में भौतिक पृथकता अवश्य देखी जाती है, किंतु उनके मानस इस प्रकार से विभक्त नहीं किए जा सकते। संवेदन, स्मृति आदि मानसिक तत्व अवश्य ही देहाश्रित होने से नितांत व्यक्तिगत होते हैं। इस प्रकार के मानस को पुराने यूनानी दर्शन में साइके कहा जाता था, जिसे प्राणमय एवं मनोमय कोश समझा जा सकता है। प्राण शरीर और मन को और मन जो जोड़ता है, और इसीलिए देह, इंद्रिय, प्राण और मन एक सम्मिश्रित नितांत व्यक्तिगत इकाई बनाते हैं, किंतु मानवीय चेतना इतने में परिपूर्ण नहीं हो जाती। उसके अंदर बुद्धि का विकास ही उसे विशिष्ट मानवता प्रदान करता है। बुद्धि अथवा विज्ञानमय कोश को प्राचीन यूनान में नाउस कहा जाता था। वही प्रवर्तीय यूरोपीय चिंतन में रैटियो, रिसंस, भेमुनिफट आदि शब्दों से अभिहूत हुआ है। मानस का यह भाग प्राणयुक्त व्यक्ति में व्यक्त या सचेत होते हुए भी अपनी सार्वभौमिकता को अक्षत रखता है। जहाँ तक मनुष्य एक ज्ञान संपन्न और ज्ञान पूर्वक करता है, वह बुद्धि के ही निर्णयों से निर्देशित होता है। बुद्धि में एक सर्वसाधारण साक्षित्व होता है। इस साक्षिता में ही मैपन का आरोप कर व्यक्ति ज्ञाता और कर्ता बनता है। उसका भोक्तृतत्व उसकी अपनी विचित्र वासनाओं से अनुविध होकर निजी और व्यक्तिगत होता हुआ भी वह अपने ज्ञान और विचारों के द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ भेदाभेद संबंध में बंधा रहता है। गुरु और शिष्य, पिता और पुत्र, पत्नी और पति और पत्नी केवल भौतिक सानिध्य अथवा साहचर्य से उत्पन्न अनुकारिता मात्र से संबंध नहीं होते, अपितु समान ज्ञान और मूल्यों के साझीदार होने के नाते उनके कार्य मानो अपने बृहत्तर मानस की अभिव्यक्तियां होते हैं। मानवीय मन के इसी बौद्धिक पक्ष की ओर ध्यान देते हुए बोसांके ने कहा है कि समाज ऐसी बुद्धि वृत्तियों की व्यवस्था है, सिस्टम ऑफ ए परसिनिपिएंट सिस्टम्स, जिनसे व्यक्तियों के विचार प्रभावित होते हैं। बुद्धि की इस सर्वसाधारणतया के कारण ही व्यक्तियों के बीच संप्रेषण संभव है। मानवीय संबंध और कार्य निरा प्रत्यक्ष गोचर व्यवहार नहीं है, वे अर्थ संकेत भी होते हैं। सामाजिक सत्ता इस निरंतर अर्थ संप्रेषण और अर्थ अभिज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति के लिए एक साथ ही अंतर बाह्य होकर रहती है। अबोध शिशु की अवस्था से मनुष्य का विकास उसकी पृथकता को सामाजिक संस्कारों से बांधकर उसे अपने व्यक्तित्व का प्रबोध और अपनी सामाजिकता का बोध एक साथ ही देता है। सामाजिकता व्यक्तियों में और ऐतिहासिकता समाज की पीढ़ियों में वैसे ही अनुस्यूत रहती है जैसे मणिगणों में सूत्र। व्यक्ति और समाज के जटिल संश्लेषण के बावजूद उनके द्वारा अदा की गई भूमिका के अपेक्षिक प्राधान्य के कारण उनके क्षेत्रों का विभाजन आवश्यक हो जाता है। इतिहास की प्रक्रिया में समान व्यक्ति समुदाय में अंतर्भूत हो जाते हैं, उनकी जीवन विधा एक सामान्य रचना और व्यवस्था के अनुसार समझी जा सकती है। असामान्य व्यक्ति इतिहास के अपूर्व सृजन का केंद्र बिंदु होते हैं, वे विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में घटने वाले महत्वपूर्ण नूतन परिवर्तनों का नेतृत्व करते हैं। उनके लिए उनका समुदाय एक ओर संभावनाओं का पुंज होता है, दूसरी ओर एक सीमा बंधन होता है। जैसे प्राणी अपने परिवेश से नियंत्रित और उसे परिवर्तित करता है, ऐसे ही कुशल नेता प्रतिभावान असामान्य व्यक्ति अपने क्षेत्र और युग के समाज का दिग्दर्शन करता है। जो संभावनाएं सामुदायिक नवजीवन में धीरे धीरे बनती पनपती हैं, उनका अर्थ ऐतिहासिक व्यक्ति के जीवन और कार्यों में मूर्त हो उठता है। इतिहास की गतिविधि को समझने के लिए इन दोनों तत्वों के संबंध को समझना आवश्यक है। एक ओर जनजीवन की अव्यक्त सृजनशीलता, संस्कारबद्धता और अव्यक्त विकारशीलता, दूसरी ओर महापुरुष की व्यक्त सृजनशीलता, अपूर्व उद्भावना की शक्ति, तात्कालिक परिस्थिति की कठिनाइयों के बावजूद एक निश्चित दिशा की ओर मोड़ देने की शक्ति, यह संबंध प्रतिभाशाली और समान व्यक्ति का अथवा ऐतिहासिक व्यक्ति और समाज का उन दोनों को जोड़ने वाले अंतःसूत्रों के द्वारा ही संभव है। सांस्कृतिक क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया देखने पर यह सत्य व्यक्त होगा। उदाहरण के लिए यह ज्ञात होगा कि धर्मसूत्रों की रचनाएं अथवा हम्मुरब्बी की कानून व्यवस्था एक नवजीवन के द्वारा उद्भावित प्रथाओं का विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा पुरस्कृत और व्यवस्थित रूप थी। अनेक मालवादी रागों की उत्पत्ति इसी प्रकार के जानपदिक धुनों के परिष्कार के द्वारा हुई है। अनेक नृत्य और नाट्य के रूपों की उत्पत्ति भी इसी प्रकार मानी जानी चाहिए। ग्रीस के प्रसिद्ध दुखांत नाट्यकारों की रचनाएं अथवा रामायण महाभारत अथवा रामचरितमानस की सफलता, लोकप्रियता और चमत्कारिता उनमें लोकरुचि और प्रतिभा के अपूर्व मणिकांचन संबंध से निष्पन्न हुई है। धर्मों के अभ्युदय के पीछे भी इसी प्रकार की प्रक्रिया देखी जा सकती है। ईसाई, इस्लाम, बौद्ध अथवा जैन धर्म विशिष्ट महापुरुषों के साथ संबंध होते हुए भी अपनी पूर्वभावी और समकालीन प्रवृत्तियों के प्रभाव से ही अपने अपने निश्चित रूप प्राप्त कर सके। राजनीतिक घटनाओं में व्यक्तियों का महत्व परंपरागत इतिहास में सदा ही माना जाता रहा है। नवीन इतिहासकार अवश्य इन घटनाओं के पीछे सामुदायिक वृत्तियों का स्थान निरूपित करने का प्रयत्न करते हैं। उनका अभिप्राय यह है कि राजनीतिक घटनाएं राजनीतिक संस्थाओं और सामाजिक वर्गों की व्यवस्था से नियंत्रित होती हैं। यह व्यवस्था सामाजिक हितों की और आग्रहों की एक सजीव परिभाषा प्रस्तुत करती है। इसमें बलवतम पक्ष राजसत्ता का संचालन करने में अंततः समर्थ होता है। कुशल व्यक्तियों की तात्कालिक सफलताओं अथवा विफलताओं से ही राजश्री का भाग निर्णय पूरी तरह से नहीं होता है। राजनीतिक घटनाओं में नेता के पीछे एक संगठित पक्ष की शक्ति होती है और संगठन के पीछे एक स्वार्थों का समझौता या हितों की कल्पना। समूचा समाज इस प्रकार के दलों व वर्गों में विभक्त अथवा विभाज्य होता है। समाज की कानूनी व्यवस्था इन वर्गों और दलों, उनके स्वार्थों और हितों को जोड़ने वाली संधियां और तोड़ने वाली दरारें होती हैं। जैसे चतुर कारीगर अपनी सामग्री के निहित बलाबल के विचार पर अपनी रचना आधारित करता है, ऐसे ही कुशल राजनीतिज्ञ अपने संगठित समाज के अंदर से शक्ति का संग्रह करता है और उसकी रचना वहीं तक सफल और स्थायी होती है जहाँ तक वह समाज के प्रबलतम संकल्प का अनुसरण करती है। इस दृष्टि के दो पहलू हैं। एक तो यह कि राजकीय सफलता का अंतिम आधार समाज के व्यवस्थित बलाबल पर निर्भर करता है। दूसरा यह कि उसका आधार समाज का वास्तविक हित संकल्प है। बल सदा न्यायसंगत नहीं होता और न बल के सारे तत्व ही न्यायानुकूल होते हैं। निहित स्वार्थों के आधार पर दल बंधन अथवा वर्ग संगठन आम बात है। इस प्रकार के दलों और संगठनों के संघर्ष में विजय बलाबल सूचित करती है, न कि समाज के वास्तविक हितों की विजय। मार्क्सवादी और अन्य भौतिकवादी यह मानते हैं कि समाज का समान हित कोई अर्थ नहीं रखता। समस्त इतिहास संघर्षरत पृथक पृथक स्वार्थों का द्वंद्व है, जिसमें विजयी स्वार्थ ही समाज के हित के नाम से कहे जाते हैं और उनके अनुकूल व्यवस्था ही न्याय व्यवस्था बनती है। दूसरी ओर जनतांत्रिक उदारवादी इतिहासकार यह मानते हैं कि राज का अंतिम आधार समाज के वास्तविक हित का संकल्प है, जो कि अव्यक्त रूप से जन चेतना में विद्यमान रहता है। राजनीतिक सफलता समाज की अंतश्चेतना को अभिव्यक्त प्रदान करने में है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि तात्कालिक राजनीतिक सफलता संगठित दलों के बलाबल पर निर्भर करती है, यदि यह बलाबल उस समाज की अपनी वास्तविक हित की धारणा के अनुकूल न हो तो वह टिकाऊ स्थिति नहीं हो सकती। एक ऐसी व्यवस्था जो कि समाज की न्याय बुद्धि के विरुद्ध है, चिरकाल के लिए बनी नहीं रह सकती। यह बात दूसरी है कि समाज की जागरूक न्याय बुद्धि अभ्रांत नहीं होती, किंतु यह स्मरण है, जैसा रूसो ने कहा था, कि जनता धोखा खा सकती है, बिगड़ नहीं सकती। इसका अर्थ यही है कि जनमानस जिसे न्याय समझता है, उसे वह भ्रांतिवश वैसा समझता हो, किंतु वह जिसे न्याय समझता है उसका ही समर्थन करता है। मनुष्य की बुद्धि न्याय पक्षपतिनी होती है, भले ही वह अज्ञान से प्रवंचित हो। हमें यह मानना पड़ेगा कि मनुष्य की न्याय बुद्धि का उसके अपने हितों की कल्पना का विकास होता है। जैसा ग्रीन ने बताया है, सहज अधिकार कोई एक स्थिर धारणा के विषय नहीं है। जब ऐतिहासिक क्रम में हित और न्याय की समाज स्वीकृत धारणा पलटती है, तो वह एक व्यापक क्रांति का सूत्रपात करती है। इस आधारभूत न्याय बुद्धि या हित बुद्धि के ऊपर ही सामाजिक व्याख्याएं और उनके ऊपर राजनीतिक या कानूनी व्यवस्थाएं कायम रहती हैं। नींव के खिसकने पर बाकी इमारत का टूटना अवश्य भावी बन जाता है। कुछ लोग यह जरूर कहते हैं कि सारे सामाजिक ढांचे की नींव दलबद्ध स्वार्थ है, जो कि आर्थिक उत्पादन की व्यवस्था से परिभाषित होता है और न्याय बुद्धि आदि इस नींव पर खड़ी की गई सामाजिक इमारत के अलंकारिक कलश और कंगूरे हैं। यह मत इस बात को नज़रअंदाज कर देता है कि मानव मन स्वभाव से सत्य और न्याय का पक्षपाती है। वह स्वार्थों को भी हित और न्याय सम्मत मानकर ही अपने आप को और दूसरों को समझाता है। न्याय बुद्धि से अनुमत हितों के लिए और विवेक सम्मत मूल्यों के लिए वह अपने स्वार्थों को छोड़ने की क्षमता रखता है। यह मानव स्वभाव के प्रति बड़ा भारी निराशावाद होगा यदि हम उसे स्वार्थ गर्त से मुक्ति पाने का अधिकारी ही न समझें। समाज को हमने संस्थाओं की व्यवस्था और संस्थाओं को समान मानवीय प्रयोजनों की सिद्धि के लिए परोपकारी संबंधों, व्यापारों और संप्रत्ययों की व्यवस्था माना है। उदाहरण के लिए विद्यालय एक संस्था है जो कि विद्या उन्नति रूप समान प्रयोजन का साधन है। इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए अध्यापक, छात्र, प्रशासन, संरक्षक आदि विभिन्न परोपकारी भूमिकाओं को अदा करने वाले वर्ग नियत व्यापारों के संदर्भ में नियत रूप से संबद्ध होते हैं। समूची व्यवस्था को एक आदर्श प्रत्यात्मक व्यवस्था भी कह सकते हैं। संरचकों से समर्थित और प्रशासकों से सहायता प्राप्त अध्यापकों का विद्यानुत के लिए समन्वित प्रयास, ऐसी नाना संस्थाएं संबद्ध होकर सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करती है। इस समुचित सामुदायिक मानस को ही एक प्रकार से प्रयोजनों, विचारों, भावों और संस्कारों की व्यवस्था कहा जा सकता है। इस विषयभूत अथवा वस्तुभूत मानस को समाज कहा जाता है, जो कि व्यवहार में संबंध प्रधान होता है। इसका एक अन संबंध पक्ष है और वह है अपने साध्यों और प्रयोजनों का सार्वभौमिक आधार का मूल्यांकन। जहां सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मूल विशिष्ट समाज के आचार व्यवहार से संबंध रहते हैं, कला, धर्म आदि मूल समाज में स्वीकृत होते हुए भी अपनी सार्वभौमिकता का दावा करते हैं, इस प्रकार के सार्वभौम मूल्य विश्व संस्कृति कहलाता है। व्यक्ति के सामूहिक परिवेश को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो उसका औरों के साथ नियत व्यावहारिक संबंध, जो कि अंतोतगतवा न्याय बुद्धि के सूत्र से बंधा रहता है। परिवेश का यह भाग समाज कहा जाता है। दूसरी ओर सार्वभौमिक विचारों और मूल्यों का बिंब, जो संस्कृति कहा जाता है। हम ऊपर कह चुके हैं कि साधारण व्यक्ति समाज और संस्कृति का अंधानुकरण करते हैं, जबकि असामान्य व्यक्ति इनकी आंतरिक संभावनाओं के विकास में नेतृत्व करते हैं। जिस समय समाज की गति उसके सांस्कृतिक मूल्यों को चरितार्थ करने की दिशा में होती है, उस गति को प्रगति कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जिन राजनीतिक आदर्शों का इंग्लैंड में 1688 में वर्णन किया गया था, उनकी प्रगति 18वीं-19वीं शताब्दियों में बराबर देखी जाती है। जबकि जनतंत्र का सैद्धांतिक और व्यवहारिक आधार पुष्ट होता है और स्वाधीनतर समाज का निर्माण होता है। अथवा हम यह देख सकते हैं कि जिस प्रकार की जातीयता का स्वीकार यूरोप की राजनीतिक चेतना ने आधुनिक युग के प्रारंभ में किया, उसका परवर्ती कई शताब्दियों तक निरंतर अभ्युदय होता रहा। पश्चिमी यूरोप के देशों में भौतिक और ज्ञान विज्ञान की उन्नति देखकर ही 18वीं शताब्दी में प्रगति की धारणा का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया गया। 19वीं शताब्दी में जैव विकास की धारणा से इसकी पुष्टि हुई और विकास अथवा प्रगति का प्रत्यय इतिहासकारों के लिए एक प्रमाणभूत प्रत्यय बन गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मूल्यों को चरितार्थ करने की ओर उपसर्पण को प्रगति अथवा विकास कहा जाना चाहिए, किंतु मूल्यों की कोई एक विश्वसनीय और विश्वजनीन व्याख्या नहीं है। जहां समाजों में मूल आदर्श ही भिन्न है, वहां उनके प्रगति का निर्धारण कैसे किया जाए? क्या सब मूल्यों के आधारभूत कुछ ऐसे मूल्य हैं जो सार्वभौम और सनातन हैं? यदि कुछ ऐसे मूल्य हैं तो वे विचार करने पर विशुद्ध नैतिक मूल्य ही दिख पड़ते हैं। सुरक्षा की खोज अवश्य एक विश्वजनीन खोज है, किंतु सुरक्षा को सांस्कृतिक मूल्य न कहकर विश्वजनीन सामाजिक प्रवृत्ति कहना ही अधिक उचित होगा। सार्वभौम नैतिक मूल्यों की सर्वोत्तम परिभाषा अशोक ने की, सभी धर्म संयम और भाव शुद्धि चाहते हैं। इस नैतिकता की दृष्टि से मनुष्य समाज में कोई प्रगति हुई यह स्वीकार करना कठिन है। आधुनिक समाजों में सामान्य जनता के लिए अधिक सुरक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण के ऊपर अधिक नियंत्रण, अधिक भौतिक समृद्धि, जनसाधारण में अधिक शिक्षा आदि मूल्यों की अवश्य ही प्रगति हुई है, किंतु अधिक तकनीकी शक्ति और बौद्धिक ज्ञान विज्ञान होने के बावजूद आधुनिक मनुष्य पहले ही तुलना में अधिक नैतिक अथवा सचमुच में अधिक सुखी हुआ है, यह प्रमाणिक रूप से नहीं कहा जा सकता। इससे सिद्ध होता है कि प्रगति का प्रत्यय एक आपेक्षिक प्रत्यय है। जब हम किन्हीं विशेष सांस्कृतिक अथवा सामाजिक मूल्यों को स्वीकार कर लेते हैं तो हम अपनी उसी मूल्य निष्ठा के अनुसार सामाजिक परिवर्तनों को आंकते हैं। इसी से प्रगति की धारणा अभ्युदित होती है, किंतु एक निरपेक्ष रूप से समस्त मानव इतिहास को प्रगति के नियम का उपदर्शन मानना प्रमाणिक नहीं कहा जा सकता। विभिन्न स्थितियों में विभिन्न सीमित प्रगतियां दृष्टिगोचर होती है, किंतु एक सर्वसंग्राहक सार्वकालिक अनिर्वर्तनीय प्रगति इतिहास में नहीं देखी जा सकती। इतिहास किसका होता है? अब हम अपने मूल का प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि इतिहास किसका होता है। इतिहास संस्कृति से अनुप्राणित समाज का होता है, किंतु उसकी घटनावली दो स्तरों पर होती है जिसमें एक दूसरे पर आरोपित रहती है। एक ओर जनजीवन और जनमानस में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं जिनसे समाज की परंपरागत व्यवस्था में विक्रिया उत्पन्न होती रहती है। यह मानो सामाजिक सत्ता के क्षेत्र में थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे नियम का निरंतर व्यापार है, जिससे सभी संगठनों में विघटन होता रहता है। समाज और संस्कृति की स्थिरता या अनुकृति या और शिक्षा पर आधारित होती है। अवश्य ही शिक्षा की प्रक्रिया एक शिष्ट मान को प्रस्तुत कर पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकृति में उत्पन्न होने वाली सहज विकृति को रोकने का प्रयत्न करती है। उदाहरण के लिए भाषा के उच्चारण और शब्दों के प्रयोग में विभिन्न व्यक्तियों जातीय और स्थानीय समुदायों के द्वारा निरंतर अनुनवीनताओं का निवेश होता रहता है। इन नवीन प्रयोगों को भाषा की शिक्षा अपप्रयोग अथवा भ्रष्ट प्रयोग मानकर निरंतर विनती रहती है ताकि भाषा की शुद्धता बनी रहे। इस प्रकार एक ओर सहज विकृति की प्रक्रिया है, दूसरी ओर शैक्षिक परंपरा संस्कृति को यथावत बनाए रखने की चेष्टा रखती है। जीवन के हर स्तर पर अनुकृति के अंदर सादृश्य और वैसदृश्य अनुवृत्ति और विकृति दोनों का समावेश होता है, और शिक्षा का प्रयोजन होता है कि इस विकृति के तत्व को सीमित रखना। इन सहज अनुपरिवर्तनों के साथ साथ एक और परिवर्तन जिसे विकासात्मक कह सकते हैं धीरे धीरे सामाजिक जीवन में प्रकट होता है। उदाहरण के लिए आबादी का बढ़ना, मानवीय उपयोग से प्राकृतिक परिवेश का बदलना, क्रमशः भौतिक साधनों का संचय, सामाजिक ज्ञान और अनुभव की समृद्धि, संप्रेषण और प्रकाशन के द्वारा समाज में समन्वय और समाज सामंजस्य का बढ़ना, व्यापार और प्रचार के द्वारा विभिन्न समुदायों का संपर्क में आना इत्यादि निरंतर व्यापारशील कारणों के प्रत्येक समाज का जीवन एक दीर्घकालिक विकास की प्रक्रिया में पड़ता है। यह अवश्य स्मरणीय है कि ये वैकासिक प्रक्रियाएं अव्याहत नहीं रहती। प्राकृतिक घटनाएं और परिवर्तन, युद्ध और आक्रमण आदि के प्रभाव से क्रमिक उपचय और वृद्धि, सामंजस्य और संश्लेषण की सामाजिक प्रक्रियाएं बहुधा विच्छिन्न होती रहती है। यदि आकस्मिक बाधाओं को छोड़ दिया जाए तो जनजीवन के प्रवाह में अनुस्तरीय विकास और महतस्तरीय विकास की प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। समाज और संस्कृति आत्मविधारणात्मक और आत्मविकासनात्मक सत्ताएं हैं। यह स्मरणीय है कि जीव सत्ता की यही विशेषताएं हैं। जहां भौतिक सत्ता में निरंतर च्युती विप्रय और बढ़ती हुई यदृच्छा रिंड मनीष नजर आती है, जीव सत्ता आत्मविधारण के प्रयत्न में भौतिक सत्ता से जूझती है और इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप जीवन विकास संपन्न होता है। जहां भौतिक स्तर पर नियम स्थिर रहते हैं पर सत्ताएं बेतरतीब बनती बिगड़ती है, जीव स्तर पर एक भीक स्वर सतर्कता लक्ष्य होती है। सामाजिक सत्ता में यही प्रक्रिया एक बृहत्तर स्तर पर सम्मुख आती है। इस तरह समाज के प्रवाही जीवन में विकास और विकास की संश्लिष्ट प्रक्रिया देखी जा सकती है, जो कि समाज की जीवन प्रक्रिया के जड़ और चेतन पक्ष कहे जा सकते हैं। मानवीय चेतना में प्राण का आत्मविधानात्मक पक्ष ही नहीं बल्कि उसका सृजनात्मक पक्ष भी व्यक्त होता है। यह सृजन ही सांस्कृतिक इतिहास की मूल प्रक्रिया है। सृजन का क्या अर्थ है? जैसे स्तर पर सृजन अपनी अयथावत पुनरावृत्ति या पुनर्जन्म होता है, यह कालिक विघटन के स्तर पर स्वानुवृत्ति की चेष्टा है। चेतना की सृजनात्मकता इससे परिभाषित नहीं होती, किंतु इससे यह अवश्य सूचित होता है कि चेतना का सृजन व्यापार उसका सहज व्यापार है, यादृच्छिक कल्पना नहीं। सृजन को आत्मा भी व्यक्ति कह सकते हैं। यह अभिव्यक्ति मानसिक स्तर पर आदर्श बोध या मूल्य बोध के रूप में होती है और व्यवहार के स्तर पर आदर्शों को चरितार्थ करने के प्रयत्न में। सांस्कृतिक परंपरा मूल्यों के उन्मेष, उनके अनुचिंतनात्मक परामर्श, उनके संप्रेषण एवं तदुपयोगी संकेतों की रचना, उनकी साधना के लिए अपेक्षित संस्थाओं का निर्माण आदि से बनती और बढ़ती है। इस प्रक्रिया में प्रतिभावान महापुरुष ही पथ प्रदर्शक और तीर्थंकर बनते हैं। संस्कृति मानव मूल्यों के प्रत्यक्षीकरण, कल्पना और प्रयोग की स्वानविची और द्वंद्वात्मक परंपरा है, जिसमें मनुष्य अपनी संभावनाओं की उपलब्धि और उपलब्धियों की परीक्षा करता है। समाज के प्रवाहात्मक स्तर के ऊपर संस्कृति का सृजनात्मक स्तर आरोपित करता है। इन दोनों के संश्लेषण से ऐतिहासिक प्रक्रिया निष्पन्न होती है। स्पष्ट ही ऐतिहासिक प्रक्रिया का अधिष्ठान एक विशिष्ट संस्कृति से अनुप्राणित समाज होता है। इस प्रकार के समाज को टाइनवी सभ्यता कहते हैं। उनका यह कहना सर्वथा सही माना जा सकता है कि इतिहास सभ्यताओं का होता है। इसका अर्थ यह समझना चाहिए कि इतिहास सामाजिक स्तर पर अस्तित्व का अनुरक्षण और सांस्कृतिक स्तर पर आत्मानुसंधान की संश्लिष्ट प्रक्रिया है, जिसका आश्रय अथवा अधिष्ठान सभ्यता अथवा संस्कृति संपन्न समाज है। निष्कर्ष: इतिहास समय की दृष्टि से अतीत से वर्तमान और भविष्य की ओर निरंतर प्रक्रिया है, किंतु यह प्रक्रिया या परंपरा किसकी है और किस प्रकार निष्पन्न होती है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि इतिहास सांस्कृतिक चेतना के आत्मविकास का क्रम होता है और इस सांस्कृतिक चेतना का आधार समाज होता है, किंतु तब प्रश्न उत्पन्न होगा कि संस्कृति क्या है और समाज क्या है। समाज को सामान्य अर्थ में मनुष्यों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है, किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यक्ति पृथक पृथक शरीरों के बंध, पृथक पृथक चेतनाएं मात्र नहीं हैं। यह सही है कि व्यक्तियों के शरीर पर उनके संवेद और स्मृतियां अलग अलग होती है, किंतु मनुष्य विचार करने में समर्थ होने के कारण उसका विचार सर्वसाधारण होता है। सर्वसाधारण विचारों की दो व्यवस्थाएं हो सकती है, व्यक्तिपरक और समाजपरक। जैसे मुझे पिता का सम्मान करना चाहिए, व्यक्तिगत विचार है, परंतु पिता का सम्मान करना चाहिए, यह एक सामाजिक मूल्य का प्रकटीकरण है। यद्यपि इतिहास समाज का होता है, किंतु उसमें व्यक्तियों का योगदान और उनकी भूमिकाएं भिन्न भिन्न होती हैं। साधारणतः इतिहास में सामान्य व्यक्ति अंतर्भूत होते हैं, किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो इतिहास को दिशा और गति प्रदान करते हैं, किंतु ये व्यक्ति इतिहास के बाहर न होकर उसी में समाजगत विभिन्न संभावनाओं में से एक को अपने प्रतिभा और व्यक्तित्व के बल से उभार कर सामाजिक प्रवाह को निश्चित मोड़ देते हैं। राजनीतिक में भी जिस में प्रभु सत्ता के कारण व्यक्तियों का महत्व अधिक दिखाई देता है, इतिहास की प्रक्रिया समाजगत स्थितियों से ही नियंत्रित होती है, क्योंकि शासक का विचार समाजगत विचारों से ही प्रभावित होता है और उसे सामाजिक समर्थन से ही बल मिलता है। इसके स्वरूप के संबंध में दो मत प्रमुख हैं, एक मार्क्स का जो इतिहास की गति का वाहक है, और वाहक जो इतिहास की गति का वाहक आर्थिक आधार पर बने वर्गों के संघर्षों को मानता है। इन वर्गों की शक्तियों का निर्धारण आर्थिक उत्पादन के उपकरण करते हैं। दूसरे मत में उदारवादी इतिहासकार यह मानते हैं कि सामाजिक हित का सामान्य बोध समाज की गति को दिशा देता है। जो व्यक्ति या समुदाय इस बोध को पहचान कर उसे अभिव्यक्ति देते हैं, समाज उनका अनुसरण करता है। समाज का यह बोध भ्रांत हो सकता है। समाज अहितकर को हितकर और हितकर को अहितकर समझ सकता है, किंतु समाज उसी का अनुसरण करता है जिसे वह जनहित समझता है। इतिहास चिंतकों में एक वर्ग ऐसा भी है जो सांस्कृतिक मूल्यों के चरितार्थन की प्रक्रिया को इतिहास मानता है। अब संस्कृति जबकि सभी समाजों में होती है, कुछ ही समाज ऐसे होते हैं जो संस्कृतिगत मूल्यों का विकास कर पाने में समर्थ होते हैं। ऐसी ही समाज को सभ्यता संपन्न कहा जाता है और इन्हीं का इतिहास होता है। शेष समाज एक ही अवस्था में पड़े रहते हैं और इसीलिए उनका कोई इतिहास नहीं होता। समाप्त।